इस नुमा शाम में हम सभी आदरणीय उर्मिला दीदी जी के द्वारा सत्यता और सभ्यता इस विषय पर मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले हैं। आप सभी बाबा के प्यारे बच्चे ज्ञानामृत पत्रिका पढ़ते होंगे और ज्ञानामृत पत्रिका में हम अलग अलग लेख पढ़ते हैं, पर उसमें सबसे ज़्यादा लेख जो है वो हमारी उर्मिला दीदी जी के होते हैं। और आप बाबा की बच्ची जो है वो 1981 से है, समर्पित रूप से 1985 से आप सेवाएं दे रहे हैं। आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू में है। आप ज्ञानामृत मासिका जो है उसकी संपादिका है और त्रैमासिक हरियाली पत्रिका जो है उसकी सह संपादिका है। आदरणीय दीदी जी ने सिर्फ भारत में ही नहीं पर नेपाल में और उसके साथ साथ अफ्रीका महाद्वीप में भी केनिया देश में, थाईलैंड में, अलग अलग देशों में सेवाएं दी है। ऐसी हमारी दीदी विभिन्न विषयों पर हम सभी को बहुत अच्छी रीति से मार्गदर्शन करती है। जिनका लेख हम पढ़ते हैं आज हम उनके ही मुखारविंद से सुनेंगे सत्यता और सभ्यता के ऊपर। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का हमारा विषय थोड़ा गहरा है, इसलिए बहुत ही एकाग्रता के साथ सुनना है। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। इसका अर्थ है कि सत्य की सदा जीत होती है। और ये चिन्ह जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं या उनके जो दस्तावेज हैं उनके ऊपर होते ही हैं। अब सोचने की बात ये है कि भारत के लोग जानते हैं कि सत्य की जीत होती है, लेकिन फिर भी जीत तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। जीत का मतलब है अपने आप को जीतना, अपने मन बुद्धि संस्कार को जीतना, अपनी इंद्रियों को जीतना, अपने स्वभाव संस्कार को जीतना। तो ये शब्द केवल शब्द मात्र रह गया, जीवन में नहीं आया। अब शिव बाबा धरती पर आकर के हम बच्चों को सत्यता में टिकाते हैं। सत्य हमारी नेचुरल नेचर बने वो विधि सिखाते हैं। तो बाबा ने सत्य की परिभाषा क्या दी? बाबा ने कहा सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है। सत्यता की निशानी चेहरे और चलन में दिव्यता है। दुनिया में भी बहुत लोग अपने आप को सत्यवादी कहते हैं, लेकिन जब तक जीवन में पवित्रता ना हो सत्यता स्थायी नहीं हो सकती। सत्य का अर्थ केवल सच बोलना, सच कर्म करना यहीं तक सीमित नहीं है, लेकिन सत्य का पहला आधार है अपने सत्य स्वरूप को जानना, उसमें टिकना, उसको निरंतर अनुभव करना, हमारा सत्य स्वरूप क्या है, मैं एक शुद्ध पवित्र चेतन निर्मल आत्मा हूं, इस स्वरूप में टिकना ही सत्य बनना है। दूसरा आधार है पिता परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानना, मानना और उस आधार पर चलना। और तीसरा आधार है सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानना। सृष्टि चक्र में संगम युग सबसे सुंदर समय है, लेकिन सतयुग का समय भी अन्य आत्माओं की भेंट में सुंदर है, क्योंकि सतयुग त्रेता में हम शरीर और आत्मा दोनों से पावन बनते ही हैं। अन्य आत्माएं कोई भी, धर्म की आत्मा हो कोई भी हो, शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र नहीं बनती। फिर बाबा ने बताया कि दुनिया में महान आत्माएं दूसरी आत्माओं को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करती हैं, बहुत मेहनत भी करती हैं, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए पवित्र नेचुरल और नेचर रूप में पवित्र नहीं होते। और यहां तुम बच्चे सतयुग में नेचुरल और नेचर रूप में पवित्र होते हो, क्योंकि अभी का जो पुरुषार्थ है वो वहां नेचुरल हो जाता है। और फिर बाबा ने कहा कि मन में जो भी संकल्प उठता है उसको छिपाना नहीं है। अगर पुरुषार्थ में हमारी जीत हुई तो भी बाबा को बताना है, पुरुषार्थ में अगर हमारी हार हुई तो भी बाबा को बताना है। इसको कहते हैं संपूर्ण सत्य। और जो इस सत्यता में टिकता है वही अपने वायदे पूरे करता है। सत्यता का और सभ्यता का आपस में गहरा कनेक्शन। कहते हैं जो रॉयल आत्मा है वो सत्यता और सभ्यता की देवी है, देवता है। उसकी सोच, उसका बोल चाल, उठना बैठना, खाना पीना, सब में दिव्यता दिखाई देती है। कई बार कई आत्माएं अपने शब्दों पे बहुत जोर दे करके कहती हैं, मैं सच्ची हूं, मैं सच बोलती हूं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैं सच कह रही हूं। लेकिन ऐसा कहने वाली आत्मा में अगर सभ्यता दूसरों को दिखाई नहीं देती, दिव्यता दिखाई नहीं देती, तो वो उस सत्य को स्वीकार नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये अपने सत्य को सिद्ध कर रही। क्योंकि सत्य की शक्ति उसको अपने आप सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है। कई बार कई आत्माएं ये भी कहती हैं कि ऐसे तो मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है ना तो बहुत गुस्सा आता है। इस पर बाबा ने पूछा था, उसने झूठ बोला, तुमने गुस्सा किया, तो दोनों में राइट कौन है? हम अपनी बात को गुस्से से कहते हैं तो सभ्यता तो नहीं हुई ना उसमें। बात कहो पर सभ्यता से कहो, दिव्यता से कहो। बाबा ने कहा फिर कई आत्माएं ये चतुराई करती हैं कि मैंने गुस्सा नहीं किया पर मेरी आवाज ही तेज है, ऊंची है। इस पर बाबा ने कहा था कि साइंस के साधनों से हम आवाज को कम कर सकते हैं, माइक की आवाज को, टेप की आवाज को, टीवी की आवाज को। तो क्या साइलेंस की शक्ति से अपनी वाणी को स्लो नहीं कर सकते? इसलिए सत्य बोलो लेकिन सभ्यता के साथ बोलो। सत्य को सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं। अगर कोई सत्य को सिद्ध करता है, मैं सत्य हूं मैं सत्य हूं, तो वो जिद लगती है, उसमें दिव्यता दिखाई नहीं देती है। ये तो साधारण बात है, दुनिया वाले भी ऐसा करते हैं। और जब सत्य को कोई सिद्ध करता है तो चेहरा बदल जाता है, चेहरे पे खुशी नहीं होती, या तो सोचने वाला चेहरा होता है या तो उदासी वाला चेहरा होता है, नाचने वाला चेहरा नहीं होता है। फिर देखो कई आत्माएं कहती हैं कि नहीं, मेरे भीतर सभ्यता है पर वो गुप्त दिखाई नहीं देती। बाबा ने इसका भी उत्तर दिया कि सभ्यता कभी छिपी रह ही नहीं सकती, है तो वो जरूर दिखाई देगी। फिर कहा कि हम तो गुप्त पुरुषार्थी हैं, हम गुप्त रहते, अपने आप को प्रकट नहीं करते। इस पर बाबा ने कहा सूर्य कभी भी छिप नहीं सकता, न तो कोई कारण न कोई व्यक्ति सत्य के सूर्य को छिपा सकता है। सत्य अपने समय पर अपने आप सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य की शक्ति अति महान है, अति श्रेष्ठ है। फिर बाबा ने कहा दुनिया में कहावत है सच तो बिठो नच। इसके लिए भक्ति मार्ग में एक चित्र दिखाते हैं, आप सबने भी देखा है, बहुत कॉमन चित्र है। यमुना नदी में एक कालिया नाग है, उसके पांच फन और उसके ऊपर श्री कृष्ण जी नृत्य कर रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। तो बाबा ने पूछा ये चित्र श्री कृष्ण का है या आपका है, किसका है? श्री कृष्ण का है या हम सबका है? बाबा ने कहा आप सब भी तो श्री कृष्ण बनने वाले हो ना, श्री कृष्ण की दुनिया में जाने वाले हो ना, वहां केवल एक श्री कृष्ण थोड़े होगा, हम सब भी तो होंगे, तब तो वो राजधानी बनेगी। तो चाहे तन की बीमारी की विकराल परिस्थिति हो, देह के संबंधों की तरफ से कोई विघ्न हो, देह का कोई पदार्थ, कोई पुराना स्वभाव, संस्कार, वायुमंडल, वातावरण कितना भी जहरीला हो, लेकिन आप इन सब को नाचने की स्टेज बना दो और इनके ऊपर नृत्य करो, इसको कहते हैं सच तो बिठो नच। कुछ भी हो, बातें तो आएंगी लेकिन सत्य वाले को कभी हिला नहीं पाएंगी, बातें हिल जाएंगी पर सत्ते वाला कभी भी हिलेगा नहीं। और फिर एक दूसरी कहावत है, सच की नैया हिलेगी डूलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसके लिए भी बाबा ने कहा, ये जो हिलना डुलना है ना, ये तो एक खेल है। आजकल की दुनिया में भी ऐसे खेल बनाते हैं जिनमें ऊपर नीचे बहुत होते हैं, देखने वालों को लगता है कि ये गिर रहा है, लेकिन खेल के कारण गिरावट है, वैसे तो वो जीत रहा है। तो आपके जीवन में भी नैया हिल रही है, आपको झूला झूला रही है, आपको खिला रही है, खेलने का आनंद लो। अंदर से मत हिलो, अगर अंदर में हलचल है तो इसका मतलब यह है कि भीतर के किसी कोने में अभी असत्यता छिपी हुई। अगर अंदर भय है तो उसका कारण अंदर की असत्यता है। तो अपने भय को जीतो, अंदर से दृढ़ बनो। और अगर कहीं सामना करने की स्थिति आती है तो ब्रह्मा बाबा को सामने खड़ा कर दो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने कितनी परिस्थितियां फेस की, दुनिया की तो की ही की, लेकिन जो उनके अपने बच्चे ब्राह्मण बच्चे थे उनके भी बहुत प्रकार के उतार चढ़ाव को बाबा ने सहन किया, लेकिन फिर भी न कभी घबराया न कभी हिला। फिर बाबा ने कहा कि दुनिया के लोग कहते हैं कि आज की दुनिया में सच के आधार पर चलना बड़ा मुश्किल है, झूठ का सहारा तो लेना ही पड़ता है, दुनिया के लोग ऐसा कहते हैं। बाबा ने कहा कोई कोई ब्राह्मण बच्चा भी बाहर से तो नहीं बोलता, लेकिन अंदर में महसूस करता है कि थोड़ा तो चतुराई से चलना ही पड़ेगा। सीधा नहीं कहते कि झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ को चतुराई बोलते हैं। चतुराई का मतलब क्या है, मेरा भाव नहीं था, मेरी भावना नहीं थी, लेकिन थोड़ा तो करना ही पड़ता है, थोड़ा तो ऐसे चलना ही पड़ता है। दुनिया वाले स्पष्ट बोलते हैं और ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं। और फिर आगे क्या कहते हैं कि शिव बाबा तो ऊपर बैठे हैं मजे से, उनको क्या पता नीचे की दुनिया में क्या होता है। बाबा ने कहा शिव बाबा तो ऊपर बैठे हैं पर ब्रह्मा बाबा तो साकार में नीचे की दुनिया में रहा ना, स्टूडेंट बन के पढ़ाई पढ़ी और बाबा के सामने कितनी चुनौतियां आई। दुनिया वालों ने कहा, राय दी कि आप सीधा सीधा मत बोलो कि पवित्र बनना है, आप थोड़ा मिलावट कर दो, सत्य को डाइल्यूट कर दो। जैसे दूध में थोड़ा पानी मिला देते हैं, किसी को दिखता थोड़ी, तो लोगों ने भी कहा तुम भी इस सत्य को थोड़ा डाइल्यूट कर दो, पतला कर दो। बोलो हाँ कभी कभी पवित्र रहना है। लेकिन बाबा ने किसी की नहीं सुनी, बाबा अपने सत्य पे अडिग रहे, बाबा न घबराए न पीछे हटे। हाँ सहन बहुत करना पड़ा। जो सत्य के मार्ग पे चलेगा उसे सहन बहुत करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, मरना पड़ता है, मिटना पड़ता है और हार भी माननी पड़ती। लेकिन बाबा ने कहा ये हार अल्पकाल की है और जीत सदाकाल की है। जो सहन नहीं करते, घबरा जाते हैं, सत्य से किनारा कर लेते हैं, कहते हैं मैंने सिर्फ दो ही शब्द बोले थे, ज्यादा नहीं बोला, और वो भी दिल से नहीं बोले थे, दिखावटी बोले थे, परिस्थिति को पार करने के लिए सिर्फ दो शब्द बोले, झूठ का सहारा लिया, तो बाबा ने कहा चूंकि उसमें सहन शक्ति नहीं थी तो उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती, खाता थोड़ा रहता है लेकिन पूरा नहीं भरता है। जिसमें सहन शक्ति नहीं है वो सत्य से किनारा करेगा, और सत्य से किनारा करेगा, झूठ का सहारा लेगा तो जरूरी बात है उसको लगेगा कि थोड़ी देर के लिए मेरा काम निकल गया, मैं बहुत चतुर हूं। भले चतुराई है लेकिन जमा खाता नहीं होता है, खाता जमा उसी का होता है, उसी का भरपूर होता है जो सहन करता है, सामना करता है, पर अपने सत्य को कभी भी छोड़ता नहीं। कई भाई बहन ये भी कहती हैं कि हमने देखा अमुक व्यक्ति बिल्कुल सच्चा नहीं है, बड़ा दिखावे से चलता है, उसका बड़ा नाम है, उसको सब लोग आगे रखते हैं, और हम देखो सच्चे होके चलते हैं, हम तो सबसे पीछे। बाबा ने कहा ये पीछे रहना वास्तव में आगे बढ़ना है, क्योंकि जिनको आप आगे कह रहे हो वो तो दुनिया की निगाहों में आगे हैं, पर बाप की निगाहों में आगे को वो जो सच्चा है। तो दुनिया की निगाहों में आगे होना है कि बाप की निगाहों में आगे होना है? प्राप्ति तो तब होगी जब बाप की निगाहों में आगे होंगे, उसको तो अल्पकाल का फल मिलेगा, लेकिन जो बाप की निगाहों में आगे है उसको तो पूरे कल्प के लिए प्रारब्ध का भंडारा भरपूर हो जाएगा। इसलिए जो दिखावा करते हैं, जिनका अल्पकाल का नाम है, नीम खाली है, कहते ना थोथा चना बाजे घना, अध जल गगरी छलकत जाए, तो उन्होंने बीज भी बोया, पौधा भी उगा, वृक्ष भी बना, फल भी लगा, पर फल कच्चा खा लिया, और कच्चा फल खा लिया तो प्रारब्ध का खाता खाली रह गए। कई भाई बहन कहते हैं हमने तो कई महारथियों को भी ऐसे चलते देखा है, तो हमने भी उनको फॉलो कर लिया, क्योंकि अब साकार में ब्रह्मा बाबा तो है नहीं, तो हम बड़े भाई बहनों को देखते हैं और वैसे ही चलते हैं। बाबा ने कहा अगर महारथी भी मिक्स करता है तो उस समय वो महारथी नहीं है, वो ग्रहचारी में है। इसलिए बाबा का फरमान है सी फादर फॉलो फादर, ये तो कभी बाबा ने कहा ही नहीं सी ब्रदर सी सिस्टर। कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, और अशरीरी स्थिति में निराकार परम पिता शिव बाबा को फॉलो करो। तो सत्य के ऊपर चलने की शक्ति आ जाएगी। कई आत्माएं ये भी सोचती हैं कि सतयुग में तो किसी को पता ही नहीं पड़ेगा कि संगम युग में कौन क्या था, और सतयुग में बेशक पद कम हो पर प्राप्ति तो सबको सब कुछ होगी, अभाव तो है ही नहीं। तो सतयुग की बात सतयुग में देखेंगे, अभी तो अल्पकाल की मौज मना ले, अभी तो मजाक कर ले, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। बाबा ने कहा ये अल्पकाल का मजा सजा का भागी बना देगा, इसलिए सावधान रहो, कोई भी कर्म ऐसा नहीं करो जो सत्य के विरुद्ध हो, जो हमारी ज्ञान की धारणा के विरुद्ध हो। भगवान सच्चे दिल पर राजी होता है, कहते सच्चे दिल पर साहेब राजी, उसका नाम दिल वाला है, दिलाराम है, दिमाग राम उसका नाम नहीं। तो बाबा के दो प्रकार के बच्चे हैं, एक दिल वाले हैं और एक दिमाग वाले हैं। दोनों में क्या अंतर? जो दिमाग वाले बच्चे हैं वो ज्ञान सुनाने में बहुत होशियार, लेकिन जो दिल वाले हैं वो दूसरों पे परोपकार करने में होशियार। जो दिल वाले बच्चे हैं उनके पास पॉइंट्स बहुत इकट्ठी रहती है, लेकिन जो दिल वाले बच्चे हैं वो पॉइंट रूप एक सेकंड में बन जाते हैं, अर्थात आत्मिक स्वरूप में तुरंत टिक जाते हैं। जो दिल वाले हैं उनके पास बड़ा दिमाग नहीं है, लेकिन चूंकि भगवान उनसे राजी हैं, भगवान की दुआएं उनको प्राप्त हैं, तो समय प्रमाण मन वचन कर्म से क्या करना है ये उनको तुरंत टचिंग आती है, क्योंकि जिस पे भगवान राजी होगा उसका हर कर्म युक्ति युक्त योग युक्त होगा। जो दिमाग वाले हैं उनकी बात दिमाग को लगती है, और जो दिल वाले हैं उनकी बात दिल को लगती है। बाबा ने कहा जब यज्ञ की सेवाएं शुरू हुई तो जो हमारे पुराने आदि आदि रतन थे उनके पास भाषण करने की कला नहीं थी, वाणी की कला नहीं थी, लेकिन दिल में दिलाराम बैठा था, तो उसी सच्चे दिल से कितने वारिस पैदा किए और कितनों को दिलाराम का बनाया। भाषा गुलाबी थी, मिक्सचर थी, लेकिन नयनों में रूहानियत थी। तो बाबा ने कहा अपने आप को चेक करो कि मैं कौन, दिल वाला हूं या दिमाग वाला हूं। और फिर बाबा ने कहा चेकिंग में भी दोनों अलग अलग प्रकार से चेकिंग करते हैं। दिमाग वाला कैसे चेकिंग करता है? कहता है बाबा मैंने तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, अपना समय लगाया, इतना तो बहुत है, कई आत्माओं से तो मैं बहुत अच्छा हूं, इतना करना कोई कम बात है क्या? मैंने बहुत कर लिया। और फिर नामी ग्रामियों में भी एकाध कमजोरी तो है ही, मेरे में है तो क्या बड़ी बात। ये अलबेलेपन के चश्मे से वो अपने आप को देखते हैं, कौन है ये? दिमाग वाले। और दिल वालों का जो चश्मा है वो स्व उन्नति का चश्मा है। वो अपने आप को कैसे देखते हैं? वो मन में सोचते हैं कि क्या मेरा मन वचन कर्म बाप पसंद है, मैं और मेरा बाबा, इसके अलावा वो दूसरे तीसरे का संकल्प ही नहीं करते। मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, इसी धुन में लगे रहती। दूसरा 20% बदले, मैं 80% बदलूं, ऐसी कंडीशन भी नहीं, पूरा ही मुझे बदलना है। वो ओटेसु अर्जुन, अर्जुन मतलब अलौकिक जन। तो बाबा ने कहा ये है यथार्थ स्व उन्नति का चश्मा। और फिर बाबा ने कहा अगर कोई सच्चे दिल वाला है जिसके ऊपर बाबा राजी है, तो उसको दिमाग तो बाबा गिफ्ट में दे देगा, दिल वाले को दिमाग तो मिल जाएगा। इसलिए अपने आप को ये देखो कि भगवान मुझ पे राजी हैं, मैं सच्चे दिल वाला हूं, सच तो बिठो नच, मैं निर्भय हूं, निश्चिंत हूं। फिर बाबा ने एक और अंतर बताया, सत्य और असत्य में क्या अंतर है? सत्य की जीत सदाकाल की, हार अल्पकाल की, और असत्य की जीत अल्पकाल की और हार सदाकाल की। असत्य के आधार पे जो अल्पकाल विजयी बनता है, तो अल्पकाल के लिए तो बहुत खुश होता है, लेकिन जब सत्य की जीत होती है तो उसे बहुत पश्चाताप करना पड़ता है। असत्य का अल्पकाल का विजयी अपने को ज्ञानी समझता है, बहुत होशियार समझता है, लेकिन चूंकि वो बाप के दिल पर नहीं चढ़ता तो उसे संपूर्ण प्राप्तियां नहीं होती, अधूरी प्राप्तियों में संतुष्ट रहना पड़ता है। फिर बाबा ने कहा, अगर किसी वस्तु व्यक्ति वैभव तीनों में से किसी को भी आधार बनाया, आपका वायदा है एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसे को छोड़ के इनमें से किसी को भी आधार बनाया, मतलब असत्य का सहारा लिया। कहने में तो बच्चे कहते हैं और कोई नहीं, बस एक ही है। बाबा ने कहा आज की दुनिया में ऐसे खिलौने मिलते हैं जो ऊपर से दिखने में एक दिखते हैं, पर खोलो तो एक में से एक, फिर उसमें से एक, फिर उसमें से एक, कितने में से कितने निकलते। तो आप भी कहते हो मैंने एक का सहारा लिया, पर उस एक के पीछे कितनी लंबी लाइन है। इसलिए अगर एक के साथ हो तो सत्य का मिलन मेला है, और अगर दूसरे का भी साथ लिया तो असत्य का झमेला ही झमेला है। तो किसमें रहना, सदा मेले में रहना है कि झमेले में रहना है? इसलिए कभी भी एक को छोड़कर के किसी भी दूसरे की तरफ देखना ही नहीं। फिर बाबा ने कहा कि जैसे सत्यता और सभ्यता का चोली दामन का साथ है, ऐसी शीतलता और सत्यता का भी आपस में गहरा कनेक्शन, दोनों का बैलेंस हमारे जीवन में होना चाहिए। शीतलता अर्थात किसी क्रोधी को शांत कर देना, कोई अहंकार वश मैं करे और उसको भी बाबा बाबा बोलना सिखा देना। आज की दुनिया में आत्माएं अनेक प्रकार की अग्नि में जल रही है, तो पहले उन्हें शीतलता की शक्ति से शीतल करो, फिर वो सत्यता को स्वीकार करेंगी। शीतलता की शक्ति मतलब आत्मिक स्नेह की शक्ति। तो बाबा ने उदाहरण दिया कि आपकी जो चंद्रमा माँ है, यानी कि ब्रह्मा माँ है, वो शीतलता की शक्ति से किसी भी बिगड़े हुए बच्चे को परिवर्तित कर लेती हैं। शीतलता की शक्ति से उसमें शीतलता भरती है और उसे सत्यता को ग्रहण करने योग्य बनाती है। पहले माँ योग्य बनाती हैं और फिर ज्ञान सूर्य शिव बाबा अपनी सत्यता की किरणों द्वारा उसे योगी बनाते हैं। तो जब तक कोई योग्य ना बने तब तक वो योगी नहीं बन सकता। शीतलता आती है तो क्यों क्या कैसे, ये व्यर्थ का विस्तार खत्म हो जाता है, शांति आ जाती है, एकाग्रता आ जाती है। आने वाले समय में अनेक प्रकार की अग्नियों से जलती हुई आत्माएं आपके पास आएंगी, आप उन्हें आते ही सत्य ज्ञान सुनाएंगे तो वो उसको हजम नहीं कर पाएंगी। इसलिए पहले आपके पास शीतलता का स्टॉक होना चाहिए जिससे आप उन पे ठंडे छींटे डालेंगे, उनकी तपत को कम करेंगे, फिर वे आपके ज्ञान को स्वीकार करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि देखो सत्यता की शक्ति कितनी महान है, प्रकृति को पूरा बदल देती है। भक्ति में प्रकृति के पांचों तत्वों को देवता कहती है। तो ये देवता क्यों बनी, कैसे बनी? आपकी सत्यता की शक्ति से बनी। पहला तत्व है पानी। तो पानी क्या करता है? चारों तरफ की अमूल्य सामग्री को इकट्ठा कर देता है भारत में। इसलिए कहते हैं सागर ने मोतियों की थालियां भर भर के दी। फिर धरती, धरती हिलती है, भूकंप आता है, तो धरती के नीचे दबी हुई संपदा एक जगह इकट्ठी हो जाती है भारत में। तो धरती ने भी आपको अपनी संपदा दे दी, तो धरती को भी देवी के रूप में पूजते हैं। फिर इंद्र को देवता कहते हैं, सत्यता की शक्ति से इंद्र देवता, जल देवता, वो क्या करेगा? ये इतनी तमो प्रधानता धरती पे है तो बरसात से सफाई होगी। एक तो हवा सफाई करेगी, एक बरसात सफाई करेगी, ये दोनों तत्व सफाई करेंगे। और फिर अग्नि, अग्नि जो अनचाही चीजें उनको जला करके नामो निशान मिटा देगी। तो बाबा ने कहा देखो, सत्यता की शक्ति से सतयुग की स्थापना होती है, सबको सदगति मिलती है, आत्माएं स्तो प्रधान बनती हैं, और प्रकृति भी सतोगुणी बन करके आप बच्चों की दासी बन के दो युगों तक सेवा करती हैं। क्योंकि सत्यता पारस के समान है। पारस क्या करता है? लोहे को स्पर्श करके उसको सोना बना देता है। तो सत्यता की शक्ति से आपका रूप रंग, देश वेश, आपका खान पान, कर्म व्यवहार, आपके संबंध संस्कार सब बदल जाती, स्वरूप बदल करके देवता ही बन जाता है, वेश बदल करके देवता ही बन जाता है। आधा कल्प तक लोग आपकी पूजा करते हैं, महिमा करते हैं, और आधा कल्प तो आप चेतन रूप में, देव रूप में रहते हैं। सत्यता की शक्ति से आपका एक एक कर्म गायन पूजन योग्य बन जाता है, उसकी भागवत बन जाती है। आपके वचन को लोग सत्वचन महाराज कह करके याद करते हैं, एक वचन सुन के भी अपने को धन्य समझते हैं। और आपके जो कर्म हैं उनके चरित्र मंदिरों में दिखाए जाते हैं, दर्शन होते हैं उनके। तो ये सब कैसे बदल गया सब कुछ? ये सब सत्यता की शक्ति से हुआ। तो ये बहुत महान शक्ति है, परिवर्तनकारी शक्ति है। इसलिए 20 नाखून का जोर लगा करके भी सत्य में टिकना है, कुछ सामना करना पड़े, सहन करना पड़े, तो बाबा ने कहा घबराओ नहीं, क्योंकि सत्य समय प्रमाण अपने आप को प्रत्यक्ष करेगा। सत्य की जीत होके रहेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। और अगर कोई छिपाता है बाबा से कुछ भी तो क्या होगा? उसके लिए भी भारत में एक कथा प्रचलित है, श्री सत्यनारायण देव की कथा, आप सबने सुनी होगी। उसमें एक प्रसंग आता है कि जो साधु नाम का व्यक्ति है वो अपनी हीरे मोती जवाहरात की जो कमाई है उसे एक नाव में भरता है, और जैसे ही नाव का लंगर खोलने लगता है तो सामने से एक बूढ़ा ब्राह्मण आता है। तो उसको देख के वो डर जाता है कि ब्राह्मण को कुछ देना पड़ेगा, वो देना चाहता नहीं। तो वो बूढ़ा ब्राह्मण पूछता है कि तुम्हारी नाव में क्या है? तो वो असत्य का सहारा लेता है, छल कपट करता है। क्या बोलता है कि इसमें तो लता पत्ते सूखे, वो भी सूखे, वो भरे हुए। तो ब्राह्मण कहता है तथास्तु, चला जाता है। फिर जैसे ही वो लंगर खोलता है तो नाव लहरों पे उछलने लगती। उसको लगता है नाव तो भरपूर थी, उछल कैसी रही है, खाली कैसी हो गई? तो ऊपर का कपड़ा हटा के देखता है तो सूखे लता पत्ते अंदर पड़े। तो उसको लगता है अरे ये तो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, कोई देवदूत था या भगवान का रूप था, तो उसको ढूंढना चाहिए, उसको ढूंढना चाहिए। फिर ढूंढने निकलता है, वो मिल जाता है, तो उससे माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने असत्य बोला, मेरी नाव में तो सोना हीरा मोती भरा हुआ है। तो फिर कहता है तथास्तु, और फिर नाव में फिर से सोना हीरा बन जाता है। तो ये भारत में कथा सुनाती।
तो बाबे ने एक मुरली में इसका उदाहरण देके बताया
कि देखो जो छल कपट करते हैं ना बाबा के साथ, अपना सच्चा पोता मेल नहीं देते,
तो उनका क्या होता है?
सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है,
उनके खाते में जमा ही नहीं होता,
उनको मिलता ही नहीं।
इकट्ठा करने की मेहनत करते हैं
लेकिन अगले जन्म तक ट्रांसफर ही नहीं होता है, यहीं का यहीं छूट जाता है, तो कितना बड़ा घाटा हो गया। और जो बच्चे सच बोलते हैं तो उनको बाबा कहता है तथास्तु, यहां भी सुख पाओ आगे भी सुख पाओ। इसलिए कोई भी पोता मेल बाबा को देना हो तो पूरी तरह से एकदम निर्मल हृदय से बाबा को देना है। मुझे घाटकोपर की नलिनी दीदी की सुनाई हुई एक बात याद आ रही है। जब बाबा साकार में थे तो टीचर्स बहनें अपना पोता मेल लेके आया करती थी, और उस जमाने में तो रुपया पैसा आना दो आना चवन्नी अठन्नी ये सब कुछ चलता था। तो एक तरफ लिखना होता था आमदनी कितनी हुई, एक तरफ लिखना होता था खर्चा कितना हुआ, और फिर नीचे बैलेंस। तो कई आत्माएं ऐसी होती थी जिनका पोता मेल राउंड फिगर में होता था, मतलब एक रुपया दो रुपया पांच रुपया दस रुपया। तो बाबा देखते ही समझ जाते थे कि जरूर पोता मेल सच्चा नहीं है, क्योंकि आश्रम में तो अन्ना डालने वाला भी होता था उस जमाने में, पचास पैसे डालने वाला भी होता था, चवन्नी भी डालने, और भंडारी में से ये सब खिचर जिसको हम बोलते हैं खुले पैसे निकलते ही थे। तो अगर कोई राउंड फिगर में लेके आया मतलब सच नहीं लिखा, फिर नीचे जो बैलेंस होता था वो भी राउंड फिगर में, भी सामान खरीदा तो क्या पूरा राउंड फिगर में ही आया? उस जमाने में तो एक आने की भी बहुत कीमत थी। तो फिर बाबा समझाते थे कि बच्चे अगर कोई बच्चा आपको पचास पैसे देता है, कहता है मेरी ईंट बाबा के घर में लगा देना, तो आपको पचास पैसे भी लिखने। कोई चवन्नी देता है तो चवन्नी भी लिखनी है। जो भी कुछ है वो पोता मेल में सच्चा सच्चा लिखना है, तब आपको उसके नंबर मिलेंगे, तब आप बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। एक घटना उन्होंने और सुनाई थी, घाटकोपर का जो सेंटर था वो साकार बाबा के आगे ही खुल गया था, और उनकी जो माता जी थी विजय लक्ष्मी बहन वो संदेशी थी। उन दिनों के नियम बहुत कड़े थे, कोई भी है धारणा जिसकी ना हो वो आत्मा भोग के दिन तो खास क्लास में नहीं आ सकती थी, और बार बार उन्हें बताया भी जाता था। तो एक बार वो भोग लगाने बैठी तो एक युगल क्लास में आके बैठ गया जो धारणा मुहूर्त नहीं था, तो वो ऊपर ही नहीं जा पाई, वाइब्रेशन आए उल्टी जैसा हो गया। उसने पूछा कि अगर क्लास में कोई धारणा मुहूर्त नहीं है तो साइड के कमरे में जाके बैठ जाए, पर वो युगल उठा ही नहीं। फिर दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ, फिर आके बैठ गया, फिर वही सिचुएशन, खिंचावट ही ना हो बाबा की तरफ क्योंकि वाइब्रेशन ऐसे। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ, फिर बाबा ने कड़ा कदम उठाया। चेतावनी तो उसको दी जा रही थी, बार बार चेतावनी दी जा रही थी, फिर बाबा ने क्या किया, उस संदेशी की आंखों से उसको इतनी कड़ी दृष्टि दी कि वो वहीं बैठा बैठा कांपने लगा, और फिर कांपते कांपते उठ करके क्लासरूम से बाहर चला गया। और फिर उसने अपनी सत्यता को स्वीकार की। तो ये बात साकार बाबा को लिख करके बताई गई कि बाबा ऐसा ऐसा हुआ। तब बाबा ने कहा कि ये बात सब सेवा केंद्रों पे भेजी जाएगी, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि ये लोग पवित्रता के लिए क्यों बोलते हैं, उनको थोड़े पता है कि इनकी बैकबोन कौन। ये बाप भी है पर बाप के साथ साथ धर्मराज भी है। तो अगर कोई तीन बार की चेतावनी के बाद भी नहीं समझता है तो फिर बाबा को अपना कड़ा रूप भी प्रकट करना पड़ता है। तो इस प्रकार से बाबा ने उस आत्मा को एक तरह से शिक्षा दी। बाद में तो उनको समझ में आ गया कि यहाँ झूठ नहीं चलेगा। कईयों को लगता है ना कि कौन देखता है, भगवान तो निराकार है और यहाँ सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, कौन देखता है। एक बार मुझे याद है एक रिवाज से भाई आया था, उसको सिगरेट बीड़ी पीने की आदत थी। तो बहन जी तो उसको ये कह के लाई थी कि भाई वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं चलती और आपको लेके भी नहीं जानी है। बोला ठीक है बहन जी, नहीं लेके जाऊँगा। लेकिन वो छिपा करके थोड़ा तो ले ही आया था और उसको लगा कि कभी भी सुबह शाम किसी अंधेरे कोने में खड़े होके मैं पी लूँगा, किसी को पता थोड़े पड़ता है। तो सुबह अमृत वेले के बाद उसको लगा कि मैं इस पेड़ के नीचे यहाँ खड़ा होकर के, इधर तो कोई भी नहीं है, थोड़ा एकांत देखा और अपना काम चालू किया। तो इतनी देर में एक साइकिल सवार आया और आके उसके कंधे पे हाथ रख के कहा, भाई जी ये इतने पवित्र जगह है, इस काम के लिए आप यहाँ से बाहर जा सकते हो लेकिन यहाँ आप ये काम नहीं करो। तो वो एकदम चौंक गया कि बिल्कुल अंधेरा, एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं था दूर दूर तक, पर ये अचानक आ कैसे गया। तो बाबा भी कहते हैं कि बाबा हजार आँखों से हर बच्चे को देखता है। और सूक्ष्म वतन में बैठे ब्रह्मा बाबा और परम धाम से शिव बाबा, कितनी आँखें हैं बाप दादा को, अनगिनत आँखें, एक एक बच्चे को देखते। फिर बाबा कहते हैं कि मैं एक एक बच्चे की एक एक बात को जानता हूं लेकिन बताता नहीं हूं। क्यों नहीं बताता हूं? क्योंकि मैं बच्चे का डिसरिगार्ड नहीं करना चाहता, नहीं तो सभा के बीच में, सबके बीच में अगर बोल दूं तो फिर उसको कितनी फीलिंग आएगी। इसलिए बाबा बच्चों का रिगार्ड रखता है, मान रखता है, जानते हुए भी बताता नहीं है, शुभ भावना रखता है कि ये बच्चा बदल जाए। इसलिए हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है कि हम ज्ञान के आधार से अपने आप का परिवर्तन करें, बाबा के प्यार के आधार से अपने आप का परिवर्तन करें। और वैसे भी जिसके साथ सच्चा प्यार होता है उसे कोई भी बात छिपाई नहीं जाती है। बाबा को सच्चे बच्चे प्रिय लगते हैं, छल कपट वाले प्रिय नहीं लगते। इसलिए बाबा गांव के बच्चों की, भोले बच्चों की बहुत महिमा करते हैं। और जो बच्चा सच बोल देता है, बाबा कहते हैं मैं उसका आधा माफ कर देता हूँ, पूरा माफ तो नहीं करता, आधा माफ कर देता है। और अगर वो सत्य पे चलता रहता है तो सत्य पे चलने की शक्ति भी बाबा से मिलती है। अगर हम ज्ञान में आने के बाद बाबा से कुछ छिपाते हैं, झूठ बोलते हैं, तो एक का कितना गुणा, 100 गुणा, पदम गुणा। ज्ञान में आने के बाद प्राप्ति भी पदम गुणा, और अगर श्रीमत के विरुद्ध चले तो गवाना भी पदम गुणा। इसलिए हमको बहुत सावधान रहना है। ज्ञान में आने से पहले अगर हमसे कोई पाप हुआ तो उसका एक गुना था, क्योंकि तब तो हम अनजान थे। और उस समय अगर हमसे कोई पाप हुआ तो बदनामी किसकी हुई? जब हम लौकिक बाप के बच्चे थे, शिव बाबा को नहीं जानते थे, हमने कुछ भी गलत किया तो बदनामी लौकिक वालों की हुई, भगवान की तो नहीं हुई, क्योंकि भगवान के तो बने ही नहीं थे। अब जब भगवान के बन गए, टाइटल मिल गया ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, पहले नाम हमारे बाप का आता है फिर हमारा आता है, तो इतने बड़े बाप का नाम हमको मिल गया और फिर अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो बदनामी किसकी होगी? बाबा की होगी। और फिर बाबा ने कहा, सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। अगर अपने मन वचन कर्म से बाप की निंदा कराई तो उसको सतयुग में ऊंची ठोर नहीं मिलेगी। हाँ, सतयुग में प्रजा के नौकर चाकर के नौकर चाकर ऐसे पद भी बहुत हैं, बाबा कई बार कई पद गिनती कराते हैं, दास दासी नौकर चाकर, दासियों के भी दास, नौकरों के भी नौकर, चांडाल, ऐसे कई हैं। सतयुग में तो जाएगा लेकिन पद बहुत कम होगा, और वहां भी फिर ख्याल तो आएगा कि देखो ये राजा है और मैं चांडाल हूं, ऐसे भले दुख नहीं होगा, प्राप्ति तो सब होंगी, लेकिन फिर भी मन को समझ में तो आता है ना कि भाई वो इतना ऊंचा और मैं फिर इतना साधारण, तो ये इतना अंतर क्यों होगा? वर्तमान के कर्मों के कारण। कई बच्चे कहते हैं, बाबा हम आपको अपने दिल की बात लिख करके देते हैं, पत्र लिखते हैं, अपनी कमी कमजोरी लिख करके देते हैं, लेकिन आप उत्तर तो देते ही नहीं। तो बाबा ने कहा था कि आपको क्या चाहिए, दो बातें, एक है आपको उत्तर चाहिए, या जो कमी कमजोरी है उसको खत्म करने के लिए शक्ति चाहिए, क्या चाहिए? दुनिया में अगर आप किसी को पत्र लिखेंगे तो वो आपको उत्तर देगा पर शक्ति नहीं देगा, और भगवान आपके पत्र का रिटर्न में उत्तर नहीं देता। वैसे तो मुरली रोज का पत्र है चार पेज का, आप कुछ ना पूछें तो बिना पूछे भी रोज बाबा पत्र लिखता है, इसे आप लव लेटर कह सकते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर कह सकते हैं, माँ की मीठी लोरी कह सकते हैं, हर आत्मा के हर प्रश्न का उत्तर हर मुरली में है। फिर भी बाबा ने कहा, जिस घड़ी आप मुझे कोई बात सुनाते हो या मुझे कोई पत्र लिखते हो तो मैं तुरंत उसकी उसके समाधान के लिए आपको शक्ति देता हूं। और हम सबका अनुभव है, बाबा को लिखते ही वो बात खत्म हो जाती, जादू हो जाता है, तो अंदर ही अंदर बाबा से शक्ति मिली ना। बाबा ने कहा, जब बाबा के कमरे में बाबा के सामने जाते हो तो चित्र महसूस होता है कि चेतन महसूस होता है? क्या महसूस होता है? चेतन महसूस होता है। तो चेतन में बाप है तब तो चेतन की महसूसता आती है ना। इसलिए संगम युग में बाबा का कोई भी चित्र चित्र नहीं है, वो चेतन, चाहे वो हमारे कमरे में है, घर में है, मधुबन में है, हर चित्र से हमें चेतन की भासना आती है। और जब उसके साथ हम बात करते हैं, अपने दिल की सच्ची स्थिति उसके सामने प्रकट करते हैं तो हमें तुरंत समाधान मिलता है। इसलिए हर घड़ी साकार की तरह से बाबा हमारे सामने। भक्ति में कहती हैं कि जो परमात्मा है उसकी कोई परमात्मनी नहीं है, लेकिन उसके मुख से जो वाणी निकलती है वही उसकी परमात्मनी है। तो भगवान के मुख से जो मुरली निकलती है यही परमात्मनी है, ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकलती है ब्रह्मा बाबा की बन्नी है, और उसके मुख से जो वाणी निकलती है तो मुरली हमारी माँ है। और मुरली हमारे साथ 24 घंटे, हम मुरली को भगवान का दिल भी कह सकते हैं, क्योंकि भगवान के दिल में जो भी कुछ है, बाबा कहता है मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छिपाया, मैं अपने आप को खाली करके परम धाम जाऊंगा। ज्ञान की कोई बात, कोई रहस्य बाबा ने अपने पास नहीं रखा, कल्प में एक बार आता और अपना सब कुछ उलेंड देता है। तो दिल में जो भी भरा हुआ है, वो तो दिल वाला है, दिमाग वाला तो है नहीं, तो दिल में जो भी कुछ भरा है वो मुरली के माध्यम से हमारे सामने आ रहा है। तो मुरली भगवान का दिल है। और अगर आपको शरीर चाहिए तो मुरली भगवान का शरीर है, आप ये भी कह सकते हैं। साकार रूप में, चेतन रूप में, मुरली के रूप में भगवान हमारे सामने 24 घंटे मौजूद है, हर संबंध के रूप में। इसलिए दिल की हर बात का उत्तर हमें मुरली से मिलता है। मुरली को एक बार पढ़ो तो एक उत्तर मिलेगा, दूसरी बार पढ़ोगे तो उसी से दूसरा उत्तर भी मिलेगा, तीसरी बार पढ़ोगे तो फिर कोई तीसरी बात भी सामने आएगी। जब भी समय मिले मुरली को पढ़ो, सुनो, मनन करो, लिखो, दिन में 10 बार भी पढ़ लो तो अच्छी बात है ना, अमृत ही तो अंदर जा रहा है। तो जिसको निर्विघ्न बनना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है, व्यर्थ से मुक्त बनना है, बाप के दिल पे चढ़ना है, दिल तख्त नशीन बनना है, वो कई बार मुरली को पढ़े, बार बार मुरली को पढ़े। और केवल पढ़ना नहीं है, समय पर मुरली की बातें याद आई, उसके एक एक पॉइंट को हम एक शस्त्र के रूप में यूज करें और अपनी समस्याओं का समाधान करें। तो मुरली हमें सच्चा बनना सिखाती है, और जो सच्चा है उसकी हर हाल में, हर परिस्थिति में जीत है। इसलिए हमसे ही ये स्लोगन शुरू होता है, सत्यमेव जयते। और फिर ये कल्प के अंत तक भी गवर्नमेंट का भी स्लोगन बन के रहता है, पर इसका अनुभव हम बच्चे अभी संगम पर करते हैं। ओम शांति।
शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है, ब्रिकुटे बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा, परम पिता संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा
हूँ। 8 बजे तक योग चलता रहेगा, सभी योग में बैठे रहेंगे।
देह नहीं के गृह में गेही हूँ, शिव की प्यारी तन से न्यारी आत्मा से भी की स्नेही हूँ, दिव्य गुणों के मैं हूँ खान, दिव्य स्वरूप में आत्मा हूँ, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ब्रह्म से मैं अवतार लिए, देह का मैं आधार लिए, सृष्टि मंच पर अभिनय करती मैंने जन्म कई बार लिए, साथी मेरा सर्वशक्तिमान, ज्ञान स्वरूप में आत्मा ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप सुख स्वरूप आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में।